ప్రభావం పౌరుషం ప్రాహు కాలమేకేయతో భయం అహంకార విమూఢస్య కర్తు ప్రకృతిమీయుషః. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పోజ్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ కి. ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఇస్ ఫెల్ట్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రభావం పౌరుషం ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్ ప్రాహు వేర్ ఇస్ ఇట్ ఫెల్ట్? కాలం ఏకే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్స్ ఫెల్ట్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్. యతో భయం విచ్ కాసెస్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. Why? Due to the false ego of the deluded soul, ahankara vimudasya, who has contacted material nature, kartuhu prakriti miyushah. So that's the translation. That the influence of the Supreme Lord is felt in the time factor, which causes fear of death due to the false ego of the deluded soul, who has contacted material nature.
Taptari, jeev ko मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है. हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है. वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है. श्रीमद् भागवतम 11:2-37 में कहा गया है, भयं द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्. द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ जो आत्मा के परे हैं. पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है. जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है. इसीलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है. जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है, तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है. जब उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है, तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं. यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतया मुक्त हो जाता है. उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति होती है. मृत्यु भय काल का प्रभाव है, जो परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है. दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है. काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें. ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं. भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, तो फिर जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती. अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए. इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की गई है. श्रील प्रभुपाद की.
प्रभावं पौरुषं प्राहुः కాలమేకే ఎతో భయం. ఏ భాగవత్కే ఏ అధ్యాయమే హం కపిల భగవాన్కే సాంఖ్య యోగకే సంబంధమే హం సున్ రహే హం. షడ్ దర్శనమే న్యాయ వైశేషిక ఐసే ఉస్మే సాంఖ్య భీ ఏక్ ఆతా హై, ఉస్కే బాద్ యోగ హై, उसके बाद कर्म मीमांस है, उसके बाद वेदांत है. तो इसमें खास करके ये सांख्य योग में ये भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के बारे में सब पदार्थों का गणना करके, हाँ, इसलिए उसका नाम पड़ा सांख्य, ऐसे करके समझाया जा रहा है. लेकिन ये भक्ति मार्ग में भी इसके संबंध में भागवत के अंदर ये दिया गया है, कारण क्या है आप देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग दे दिया उन्होंने भगवद गीता के बीच में ही, नौवें अध्याय में, नौवें अध्याय में ही नहीं, छठे अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक भगवद गीता में। अगर भक्ति मार्ग ही दे दिया भगवान ने, उसके बाद आगे कुछ कहने की क्या जरूरत है, सब कुछ हो गया ना। बारहवें अध्याय में भगवान ने दे दिया ये अपने शुद्ध भक्तों का दिव्य गुणों के संबंध में बताया भगवान ने, है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणयैव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी से शुरू करके बारहवें अध्याय के अंत तक। लेकिन आगे जाकर भगवान तेरहवें अध्याय से शुरू करके ज्ञान और वैराग्य को कैसे पैदा करना उसके बारे में बताते हैं भगवान। अगर भक्ति मार्ग पूरा दे भी दिया भगवान ने, ये ज्ञान के संबंध में बताने क्या जरूरत है। फिर भी ये ऊर्ध मूलम अधः शाकम इस तरह के जो ऊपर उल्टा रहने वाला पेड़ जो है, जो भौतिक दुनिया है उसकी सूक्ष्मता, भौतिक दुनिया को पोषण देने वाली तीन गुण, और भौतिक दुनिया में बनाए हुए सब पदार्थ जिसको बताया जा रहा है संगात नाम से, 24 तत्वों के संबंध में तेरहवें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो ऐसे इसके बारे में वर्णन करते हैं भगवान, क्योंकि हालांकि भक्ति योग बहुत सुलभ है, हमारे मस्तिष्क उतना सुलभ नहीं है, बहुत जटिल है। जैसे इधर बताया जा रहा है, अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयूषः, ये छोटा पुरुष जो है, बड़ा पुरुष है, छोटा पुरुष है। बड़ा पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण। और छोटा पुरुष नहीं है, ये प्रकृति है, लेकिन अपने आप को पुरुष मानता है वो, जो जीवात्मा। तो क्योंकि अपने आप को वो पुरुष मानकर, भोक्ता मानकर इस भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है अपने इंद्रिय और मन को लेकर। जय श्री राधा मंजू बिहारी की, श्री गौर ने कहा कि मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, बड़ा संघर्ष कर रहा है। तो उसको बोलो कि ये संघर्ष को छोड़ दो, भक्ति में जुड़ जाओ, भगवत नाम लौट चलो, वो सुनेगा नहीं वो। इसलिए उसको समझाने के लिए भगवान ज्ञान वैराग्य इत्यादि के बारे में भगवान बताते हैं उसको, 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। तो कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि भगवान ने ज्ञान के संबंध में इतना वर्णन किया है भगवद गीता में 6 अध्याय में, इसका मतलब क्या है, ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है, इससे बढ़कर भक्ति से भी बढ़कर है ज्ञान, ज्ञान मार्ग, ऐसे बोलने की संभावना है। इसलिए ऐसे लोगों के गलत फहमी को काटने के लिए भगवान ने अंत में वापिस वही श्लोक बोला, मन मना बाबा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवैव आत्मान, ऐसा वो भी बताते हैं आगे जाकर सर्वधर्मान पर, चरम श्लोक है वो। भगवान बोले ज्ञान तो मैं बता दिया, लेकिन अंत में भक्ति को ही, भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त करोगे, वो भी भगवान ने बता दिया अंत में। तो इस तरह भागवत में भी, हालांकि कृष्ण के संबंध में बहुत मधुर सुंदर वर्णन है भागवत के 10वें स्कंद में, उस उधर तक पहुंचने के पहले अनेक अनर्थों को खत्म करके ही आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान कपिला इधर इस तरह सांख्य के बारे में समझा रहे हैं, और भक्तों को भी इस सांख्य को अच्छी तरह समझने से उनको इससे क्या मदद मिलेगा, भौतिक चेतना से ऊपर उठने के लिए और अपने आप को आध्यात्मिक ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती उस स्तर पर रखते हुए भक्ति करना भक्तों के लिए आसान पड़ेगा ये ज्ञान को हासिल करने से। जैसे इधर बता रहे हैं कि प्रभावम पौरुषम प्राहुः, भगवान पुरुष हैं, उनके सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाली चीज क्या है, कालम बताते हैं। कालम ये के यथो भयम, ये काल ऐसे बड़ा प्रभावशाली है इस दुनिया में, कोई ये काल से बच नहीं सकता, जितना भी बड़ा हो, चाहे वो हिटलर हो, नेपोलियन बोनापार्ट हो, स्टालिन हो, ब्रूस ली हो, कोई भी हो, ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी कभी सिनेमा लेते हैं, सिनेमा निकालते हैं हैंड्स ऑफ स्टील ऐसे, तो ये वो सिनेमा में दिखाते हैं कैसे उसका हैंड जैसे स्टील जैसा था, वो किसी को मार, किसी को लाफा देता तो वो मर जाता था, वो ऐसे हैंड्स ऑफ स्टील, ये सब सिनेमा सिर्फ सिनेमा में हम देख सकते हैं, लेकिन भौतिक दुनिया में जिनको ऐसे शक्ति दिखाई दे रहा है वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, क्योंकि काल के प्रभाव से सब कमजोर पड़ जाते हैं। शरीर जो मजबूत शरीर है वो ढीला पड़ जाता है, जैसे अंगूर होता है, युवक अंगूर होता है, बूढ़ा अंगूर होता है, देखा आपने युवक अंगूर कैसा होता है, एकदम हरा भरा होता है, नहीं तो काला भी होता है उसमें, लेकिन अच्छा मोटा मजबूत होता है, लेकिन वो बुढ़े होने के बाद वो किसमिस बन जाता है, ना? ऐसे ही इस दुनिया में सबके शरीर भी काल के प्रभाव से क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो इस तरह काल से सब जीव डरते भी हैं, भय भी है। ये देखिए भौतिक दुनिया ऐसे बनाया भगवान ने, काल के प्रभाव से तीन स्टेज है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना? इसलिए ये तीन काल होता है इधर इस दुनिया में, इसके कारण अनेक लोग भूतकाल में जो हो ही गया, जो नहीं होना था उसके बारे में सोच सोच कर लोग अफसोस करते हैं, और वर्तमान काल में जीने के बदले वो भविष्य काल के बारे में चिंता करते रहते हैं, भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसे होगा तो अच्छा रहेगा, इस तरह वो चिंता करते रहते हैं, तो ये भी एक चिंता का कारण बनता है। साथ साथ ना चाहने पर भी बूढ़े हो जाना, ना चाहने के पर भी मृत्यु को सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। तो इस तरह प्रभु जी बताते हैं कि इस दुनिया ये भय का दुनिया है। इस दुनिया में जैसे कभी कभी आप देखते हैं एक बिल्ली ऐसे अपने नाकों को नीचे रखते हुए धीरे धीरे चलता है, तो कोई तो कबूतर बैठकर कुछ खा रही है तो पीछे से आ जाता है बिल्ली, चमक करके पकड़ देता है उसको, पीछे से वो कबूतर चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन खा लेता है उसको। तो इस तरह आप देखेंगे इस दुनिया में अभी छिपकली है वो पकड़ता है कभी तितलियों को, तितली को, है ना, कभी कभी बड़ी से स्पाइडर है ना, स्पाइडर, हाँ, मकड़ी जो है एक बड़ा जाल बनाकर बिछाकर वो बीच में बैठ जाता है, सो जाता है, लेकिन उधर आने वाली तितली उसमें फंस जाती है, है ना, जितना तितली उड़ने के लिए प्रयत्न करते उतना वो ज्यादा फंस ही जाता है, वो मकड़ी का भोजन बन जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे इस दुनिया में तो एक जीव राशि दूसरे जीव राशि के भोजन बन जाता है। इसके कारण आप देखेंगे समुद्र में भी एक छोटा मछली जा रहा है, उसका एक अंक आगे है किधर जाना है, दूसरे अंक पीछे है उसका, वो देखता है कि कौन मेरे पीछे कर रहा है, क्योंकि बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है, बड़ा सर्प छोटे सर्प को खाता है, इसलिए उसको डर होता है। कि आपने देखा होगा वो डॉल्फिन मूवी में दिखाते हैं, उसके दो अंक हैं तो ये काम को बंद करके वो सो जाता है, लेकिन दूसरा अंक पूरा खुला है, वो देख रहा है वो, और उसके बाद ये अंक को रेस्ट देता है, ये अंक खोल देता है वो, देखता हो तो कितना अच्छा है। अगर हम लोग कर सकते तो रात भर हम पढ़ सकते हैं प्रभात किताब, एक अंक से पढ़ते रहेंगे दूसरा अंक सो जाएंगे उसके बाद, ऐसे है ना, है ना, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है भक्तों को। तो ये सिर्फ भगवान ने डॉल्फिन को दिया है ऐसी शक्ति, लेकिन डॉल्फिन के क्यों शक्ति दिया है, क्योंकि एक अंक से जब सोता है वो दूसरे अंक से अपने आप को सुरक्षा कर लेता है वो दुश्मनों से ऐसे। इस तरह प्रभु जी बता रहे हैं कि जंगल में भी बड़ा संघर्ष होता है जानवरों के बीच में, जैसे बाघ जब निकलता है अपनी गुफा से, सब बाकी छोटे जानवर उनको एक दूसरे को सिग्नल देते हुए भाग जाते हैं उधर से, वो पकड़ में आते नहीं है। देखिए भगवान की सृष्टि कितना अद्भुत सृष्टि है, वो छोटे जो जानवर हैं उनके अंदर भगवान ने ऐसी क्षमता दी है तेजी से भागने के लिए, जैसे हिरण हो, कबूतर, ये क्या खरगोश हो जो भी हो, तेजी से वो भागते हैं तो वो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं इसके बाघ के शेर के। लेकिन साथ साथ भगवान ने बाघ शेर के पास शक्ति दी है, तुम्हारे पास शक्ति है, उनके पास तेजी है, दोनों आप संघर्ष करो। ये अपने शक्ति लेकर संघर्ष करता है, क्योंकि शक्ति से अटा करेगा उसको तो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो तेजी से भाग जाते हैं। तो भगवान उनको बचने के लिए भी उपाय दिया है, इनको खाने के लिए भोजन के लिए उसी उन्हीं चीजों को भी रखा है भगवान ने। इसलिए संघर्ष का दुनिया है, सबको खुद को बचाने के लिए संघर्ष है और भोजन हासिल करने के लिए भी संघर्ष है इस दुनिया में ऐसे। तो इसके कारण ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि जानवर पंछियां जलचर इनको संघर्ष होता है, मनुष्य में भी बड़ा संघर्ष होता है। जैसे हमारे भारत में बहुत साल मुगल लोग थे, मुसलमान लोग थे जिनकी शासन हुआ, उनके शासन में उनका संस्कृति अलग ही संस्कृति है और इधर के लोगों का संस्कृति अलग है, तो वो लोग इधर रहने के वाले नहीं है। लेकिन आ गए इस देश को आक्रमण करने के लिए, बहुत कुछ पैसा था भारत में उसको लूटने के लिए और शासन करने के लिए। तो भारत में भारत के लोगों को इस तरह के पाश्चात्य दूसरे लोगों के शासन में इधर रहना, उनके संस्कृति को अपनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसलिए डर होता है, अगर कोई मुसलमान नहीं बनेगा तो मार दूंगा तुमको, है नहीं तो तुम ब्राह्मण की बेटी को एक मुसलमान को शादी में दो, है इस तरह के समस्याओं के बीच में लोगों को रहना पड़ा। कोई इस तरह का शोषण करने वाले शासन को चाहता नहीं कोई, है लेकिन लोगों को ऐसा अपनाना पड़ा। वो चले गए, उसके बाद ब्रिटिश आ गए, उसके बाद जर्मन लोग ट्राई कर रहे थे, जापानीज लोग ट्राई कर रहे थे, चीनी लोग ट्राई कर रहे थे, पाकिस्तानी लोग ट्राई कर रहे थे, ऐसे। तो इस तरह अलग अलग लोग भारत के शासन करने के लिए प्रयत्न की। तो इस तरह भारत का ही ये समस्या नहीं है, हर देश का होता है ये समस्या कि हम गुलाम न बन जाए किसी दूसरे देश के लोगों के शासन से, ऐसे लोग इच्छा करते हैं। उसको गुलाम ना बनने के लिए, अपने आप को बचा कर रखने के लिए लोग बड़े किला बनाते हैं, वो अपने डिफेंस जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है सबको बढ़ाते हैं, तो अपने आप की सुरक्षा के लिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये कभी कभी बड़ा महायुद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 सब होता है इस दुनिया में, बड़ा संघर्ष है अपने जीवन को बचा कर रखने के लिए। डर होता है, सब लोग डरते हैं कि हमारे रिश्तेदार मर ना जाए, ऐसे इस तरह है। ठीक है, अभी युद्ध नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा संघर्ष नहीं है, रशिया अमेरिका वार, इंडो पाक वार, ऐसे कुछ नहीं है, सब शांत है। तो शांति के समय में भी लोगों के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उसके कारण डरना होता है। जैसे आप बैंक में जाकर देखो, उधर गन वाले खड़े हैं, अपने हाथ में गन लेकर, गन की क्या जरूरत है, क्योंकि लोग आकर चोरी करते हैं बैंक में, कोई आ जाता है बैंक में गन लेकर सबको कंट्रोल करके पूरा पैसा लुटा कर लेके जाता है। तो कोई माता जा रही है सड़क में, डर होता है कि कोई चेन स्नैचर आकर हमारे चेन पकड़ कर उठा करना लेके जाए, अगर चेन भी लेके जाए ठीक है, कान को काटे मत, अगर सोना चांदी कान को ही काट कर लेके जाएंगे, तो डर होता है। इस तरह इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को, अगर ऐसे चोरी भी ना हो, ये शरीर ही डर देता है हमें, भोग ये रोग भयम, भोग करने वाले को रोग का डर होता है। इस तरह अलग अलग तरह के डर होते हैं इस दुनिया में, भय होता है। ये भय का सर्वप्रथम कारण है, ये बता रहे हैं कि काल का प्रभाव ही भय का कारण है, क्योंकि काल के प्रभाव से सब परिवर्तित होते हैं। सुंदर फूल जो खिल उठता है सुबह सुबह, शाम को वो मुरझाया फूल बन जाता है, वो ऐसे बन जाता है। इस तरह ये परिवर्तन के कारण सब लोग इस दुनिया में उस परिवर्तन के कारण डरते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो लोग एक एक करके छूट जाते हैं, दादाजी हो, दादी जी हो, नाना नानी कोई भी हो, पिता माता हो, कोई भी हो, वो लोग मुरझाया फूल फूल जैसे सूख जाते हैं और चले ही जाते हैं। और जो शरीर इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाला शरीर है, जिस शरीर की पालन पोषण के लिए, जिस शरीर की सजावट के लिए, जिस शरीर को लेकर हम दिखाना चाहते हैं दुनिया के लोगों को, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना बुद्धिमान हो, कितना साहस करके हमने कुछ बड़ा कमाल करके दिखाया, अपने जीवन में चमत्कार करके दिखाया है, इस तरह हम सोच रहे हैं, लेकिन वो शरीर ही चला जाता है। जो इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाला अगर शरीर ही चला गया तो किधर से हम भोगेंगे। इसलिए लोग डरते हैं काल से। अरे काल क्या है? ऐसा नहीं कि मामा मामी नाना नानी ऐसा माता पिता को उठा कर लेके जाता, हमको ही उठा कर लेके जाता है वो शरीर को ही। लेकिन शरीर को त्यागने के लिए लोग रोते हैं, इसका कारण क्या है? शरीर से पहचानते हैं, वो बताया गया है इधर। अहंकार मूढस्य कर्तुः प्रकृति मीयूषः। हम जितना हम शरीर से भौतिक शरीर से पहचानते हैं उतना हम डरेंगे मृत्यु से, बुढ़ापा से, व्याधि से हम डरेंगे उतना, वो बताया जा रहा है इधर। देखिए ये हम शास्त्र बताते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन ये शरीर एक पैकेज है। जैसे नारियल जो होता है, नारियल के ऊपर एक शेल है, उसके ऊपर फाइबर, व्हाट इज ए फाइबर, फाइबर देखा ना नारियल, तो बड़ा नारियल आपने देखा है, इसे शरीर भी एक नारियल का फाइबर जैसा है। व्हाट इज ए फाइबर? रेश, हाँ रेशे, रेशे बोलते हैं। ये नारियल के रेशा जो होता है कि हमारा शरीर ऐसा ही है। इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, वो मन बुद्धि अहंकार, वो कैसा है? वो शेल, व्हाट इज ए शेल? हाँ हाँ, क्या है? कवच है, कवच नहीं है। हाँ गावटी, ठीक है, मराठी में गावटी बोलते हैं उसको, गावटी। हाँ गावटी, उसके अंदर नारियल है ना। इस तरह आत्मा, आत्मा जो है शुद्ध है, उसके ऊपर ये दो आवरण आ गए हैं। लेकिन ये आवरण जो है हमसे अलग है, हम नहीं है ये आवरण। फिर भी हम जितना ये आवरणों से हम पहचानेंगे उतना हमें डर होगा, चिंता होगा इस दुनिया में। जैसे कभी कभी कुछ शादी में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, चक करके ऐसे चकाचक है ऐसे, और नयापन, और कोई भी देखता है लोग सोचते हैं कि हम कोई देख रहे हैं सब लोग, ऐसे उनको लगता है। लेकिन ऐसे कभी कभी एक दरवाजे से गुजर कर जाते हैं, कुछ किला के कारण ऐसे वो कट जाता है वो, तो जब कट जाता है फूट फूट कर रोते हैं वो, है ना, क्या ऐसे सुंदर कुर्ता फट गया ऐसे, है ना। तो जितना वो कुर्ता से पहचानेंगे उतना रोएंगे वो, है कि नहीं? अगर सोचेंगे मैं कुर्ता ही मैं हूँ, मैं ही कुर्ता हूँ, ऐसा अगर वो सोचेंगे ना उतना वो रोएंगे उसके लिए, है कि नहीं? तो इस तरह हम इस दुनिया के जिन पदार्थों से अपने आप को पहचानते हैं उनको भागवत बताता है हृदय स्पर्श, हृदय हृदय स्पर्शी होने वाले चीज है। यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश जहव युवैव मलवत उत्तम श्लोक लाल सह। इस श्लोक में बताया गया है हृदय स्पृश, क्या क्या चीज हमारे हृदय स्पर्शी होते हैं, जो हमारे परिवार संसार, जैसे बीबी बच्चे, माँ बाप, अपने बिजनेस धंधा और पैसे, और घर में जो पालन पोषण करते हैं, कभी कुत्ता नहीं तो गाय, कभी घोड़ा नहीं तो कार, आजकल घोड़े के बदले कार है, आजकल कार है नहीं तो सुजुकी है, कुछ बाइक है, कुछ पल्सर है, कुछ कोई कुछ भी बाइक हो, जो भी हो, तो इन चीज़ों के ऊपर हम आकर्षित हो जाते हैं। आजकल और भी एक दो चीज़ ऐड करना पड़ेगा, मोबाइल और लैपटॉप को भी। मोबाइल बच्चे से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग मोबाइल को, हमेशा हमेशा साउंड करने वाली में बच्चा है, कट 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 कुड़ 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 आवाज करते रहता है। तो इन चीजों से हम क्या हो जाते हैं, ये हृदय स्पर्शी होते हैं। इसलिए कभी कभी लोग अपने संसार के बीवी बच्चे माँ बाप के फोटो निकाल कर उसको एक पर्स में रखकर टाइम टाइम देखते हैं उसको, या तो पर्स में रखते हैं नहीं तो हृदय में रखते हैं, दोनों में रखते हैं ऐसे। इसलिए ये हृदय स्पर्शी चीजों को जब देखते हैं कि हमारे हमारे सामने ही उठा कर लेके जा रहे हैं, वो चले गए, इससे लोगों को बहुत दुख होता है इसके कारण। तो लोग पहचानते हैं इन चीजों से, और सबसे ज्यादा हम पहचानते हैं अपने शरीर से, क्योंकि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? जिस व्यक्ति को हम आईने के अंदर देखते हैं वही व्यक्ति है, उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला उद्धव को, हे उद्धव तुम मुझे पसंद है शिव जी से भी ज्यादा, ब्रह्मा से भी ज्यादा, और लक्ष्मी से भी ज्यादा मुझे पसंद है, और तुम मुझे मेरे से भी ज्यादा पसंद है। ऐसे कृष्ण ने बोला उनको। क्यों मेरे से? क्योंकि हम अपने से बहुत प्रेम करते हैं, अपने अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं। हमने एक सुंदर तस्वीर देखा तो हमने पूछा व्यक्ति को, क्या है तस्वीर ऐसा बनाया गया है? वो तस्वीर में एक बहुत बड़ा आईना था और उसमें एक बिल्ली देख रहा है अपने चेहरे को, लेकिन आईने के अंदर जो प्रतिबिंब है वो शेर का है। वो तो मैंने पूछा व्यक्ति को, ये क्या है? बिल्ली देख रहा है लेकिन शेर है अंदर। वो आदमी बोला कि नहीं नहीं इस दुनिया में सब लोग जब आईने के अंदर देखते हैं अपने आप को शेर मानते हैं, शेर जैसे। बिल्ली तो बिल्ली है, म्याऊं बोलने वाला है वो, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता है? शेर जैसे। देखिए स्त्री हो पुरुष हो, जब आईने के अंदर देखते हैं उनको जो भी नायक हो, कलनायक हो, जो भी हो, नायकी हो, कोई भी हो, जिनसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने आप को वो आईने के अंदर ऐसे दिखाई देता है उनको। समझे ना आपने? आपको मालूम नहीं क्या? तो अब वो कैसा है, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी अभी साउथ दक्षिण भारत में भी जो बड़े बड़े एक्टर थे, लोग उनके जैसे हेयर स्टाइल रखते थे, उनके से मूंछ रखते थे, दाढ़ी रखते थे, सब अपने आप को देखते थे। मूंछ दाढ़ी रखने से आप वो जैसे नहीं बन जाओगे, लेकिन लोग क्या करते हैं अपने आप को इमेजिन करते हैं ऐसे। तो इस तरह अपने आप के ऊपर ममता जो है वो बढ़ाते जाते हैं लोग बार बार हर दिन आईने में देखकर। इसलिए कुछ कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना ही छोटा आईना रखते हैं जिसमें सिर्फ आपको तिलक दिखाई देगा, आपको तिलक से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अपने शरीर के ऊपर ममता को बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना हम बढ़ाएंगे उतना शारीरिक चेतना बढ़ जाता है, तो इतना भय भी बढ़ जाता है। भयम द्वितीयाद अभिनिवेश ईशाद अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति तन्मायया तो भुज आवजेतम भक्त्यैक ईशम गुरुदेवतात्मा। ये श्लोक में बताया गया है भागवत में, भयम द्वितीया, द्वितीय का मतलब है भौतिक पदार्थ। ये भौतिक पदार्थ जब शुरू हुए, जिनसे हम पहचानना शुरू हो गया, तभी से भय शुरू हुआ है। देखिए आध्यात्मिक दुनिया में किसी तरह का भय नहीं है, क्योंकि हम भगवान के बहुत निकट हैं, भगवान के साथ ही हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम है अभय चरणार विंद रे बजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। देखिए अभय चरणार विंद रे, उनके चरण का आश्रय जिन्होंने लिया है उनको अभय प्राप्त होता है। अभयम सत्वशम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऐसे भगवान बताते हैं ना 16वें अध्याय में। अभयम सत्व, अभयम का मतलब है कि इस दुनिया में अगर कोई भगवान के पदकमल में शरणागत है, अगर वो जंगल में भी जा रहा हो उसको डर नहीं है। रात को एकदम घना अंधकार है, कभी कभी उधर अनेक प्राणियां आवाज कर रहे हैं, बाघ और शेर और हाथी आवाज कर रहे हैं जंगल में, ध्रुव महाराज चल रहे हैं जंगल में, वो रात में भी उनको डर नहीं है। नारद जो छोटे लड़के थे जंगल में जाते समय उनको डर नहीं है। अब यम सत्पसम शुद्ध, क्योंकि भगवान के आश्रय जो लिए हैं उनको मालूम है कि परमात्मा है हमारे हृदय में, वो हमारी सुरक्षा करेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर एक गुफा में बैठकर जप कर रहे थे, कुछ वैष्णव गए मिलने के लिए, देखा उन्होंने गुफा के अंदर एक बड़ा पहाड़ का सर्प उधर साथ में था, उधर उसी गुफा में था, और डर गए उसको देखकर। और इतना बड़ा सर्प उसी गुफा में पास में बैठा है वो भी। तो हरिदास ठाकुर देख रहे थे कि सब वैष्णव बात करते समय बार बार उस सर्प की ओर मुड़कर देख रहे थे सब वैष्णव। तो उनको देखकर उनको थोड़ा ऐसा लगा कि उन्होंने बोला ठीक है ये तो सर्प के रहने का स्थान है ये गुफा, तो मैं उन्होंने सोचा कि मैं कल में चला जाऊंगा कहीं और स्थान में, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। किसको? सर्प को, वैष्णव को नहीं, वैष्णव सर्प को, ऐसे वो सोच रहे थे। लेकिन सर्प इसको सुनकर उसी दिन रातों रात सर्प निकल गया वो गुफा से। लेकिन जब बोलने का बात क्या है, इधर सर्प के साथ कोई रह सकता है? अगर ये कमरे में अगर को किसी को पता चल गया कि छोटा सा सर्प अंदर घुस गया है, साहब लोग टेबल के ऊपर खड़े रहेंगे, है ना, डर जाएंगे कि नहीं? तो महान भक्तों को डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर भगवान जो परमात्मा के रूप में सर्प के हृदय में भी बैठे हैं ना, उसको बोल देंगे वो। हम लोग कॉकरोच से भी डर जाते हैं, हम लोग बहुत, ऐसे कॉकरोच उड़ता है किचन में धार धूट, सब बर्तन नीचे गिर जाते हैं सब, है ना। लेकिन बड़े बड़े महान भक्त लोग सर्प से भी, बाघ से, शेर से डरते नहीं है, क्योंकि परमात्मा उनके हृदय में है। इसलिए अभय हम सत्वशम शुद्धिर ज्ञाने, वो सीधा ऐसे बताते हैं। तो लेकिन ये शास्त्र बताते हैं कि ऐसे भगवान के महान भक्त भगवत धाम से, भगवान के संपर्क में कितना आनंद से वो जीते हैं। लेकिन वो भगवान के धाम को छोड़कर जब हम भौतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, वो सांख्य में ये बताया गया है स्टेजेस में कैसे हमें ये भौतिक पदार्थ हमको पकड़ लिया, वो बताया गया है, वो समझना बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम प्रधान है जो प्रकृति बनती है, उसके बाद वो महातत्व बनती है। ये कैसा है प्रधान, कैसा है? ये एक स्त्री है, व्हाट इज ए प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स व्हाट इन हिंदी, वो बड़ी नहीं हुई है वो, हा? बड़ी बड़ा होना बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं, प्राउड, प्राउड मीन्स बुड्ढा, कुमारी अवस्था बोलते हैं, ठीक है। वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई है, हा? अभी छोटी बच्चियां होती है, जैसे 10 साल 11 साल की होती है, एक्चुअली उस समय तक उनको बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर, ऐसे। लेकिन ऐसे एक उम्र आता है स्त्रियों का जिसमें वो अभी बच्चा पैदा करने के लिए उनके अंदर क्षमता आता है। और तीसरा स्टेज है जिधर एक पुरुष के साथ शादी करके जब वो बीज देगा, वीर्य देगा उसको, तभी वो गर्भवती होती है। तीन स्टेज है उसका। तो पहला स्टेज को प्रधान बोलते हैं, पहला स्टेज जिसमें, लेकिन स्त्री है एक छोटी है, लेकिन मालूम है कि बड़ी होकर बच्चे पैदा करने की क्षमता है इसके अंदर, बड़ी होने के बाद छोटी बच्चे को देकर बोल सकते हैं। जैसे हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु बता रहे थे कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, तो ऐसे बुक दिखा रहे थे, कोई लड़की आ गई किताब देखने के लिए, माता जी ये किताब देखिए, बोला उन्होंने, वो थोड़ा कुपित हो गई वो, माता जी बोला मुझे, मैं क्या माता जी जैसे दिख रहे हो, मैं तो तरुणी स्त्री हूँ, मैं छोटी लड़की हूँ और माता जी बोलते हो। सो उन्होंने बताया कि यू आर पोटेंशियली माता जी, व्हाट इज द पोटेंशियली, आप तो माता जी बन ही जाओगी, क्योंकि जब शादी होकर आपका बच्ची बच्चा हो जाएगा तो माता जी बनेगी आप। फिर भी हमारे वैदिक धर्म में हम छोटी से छोटी हो बड़ी हो जब सबको हम क्या बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, बोला उन्होंने, ये आदर पूर्वक बुलाना है माताओं को। माता जी नाम से क्या है, उनका आदर और सम्मान बढ़ जाता है उनके, माता जी। जैसे हम अपने माता को हम आदर देते हैं, ऐसे ही सब स्त्रियों को हम आदर देते हैं, मातृवत परदारेश, ऐसे। तो अगर कोई 7-8 साल की उम्र की स्त्री हो, वो प्रधान के बराबर है, और वो 16 उम्र की 18 उम्र की स्त्री हो, वो क्या है, वो प्रकृति है। और वो शादी हो गई पति के साथ, और वो पति कौन है, प्रभावम पौरुषम प्राहुः कालम, वो काल जो है उसको प्रकृति से जब मिलाएंगे तभी वो काल और प्रकृति के मिलावट से महातत्व बनता है। अब महातत्व गर्भवती स्त्री के बराबर है महातत्व। अभी काल कौन क्या है, ये प्रश्न मुझे बहुत होता था पहले भी, ये काल क्या है, इसे एक तत्व है नहीं तो व्यक्ति है, इस तरह हमें प्रश्न होता था। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, काल कर्म गुणादीनो देहो यम पांच भौतिक कथमन्यांस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम, भागवत में बताते हैं इसे, काल और कर्म और गुण ये तीन चीज के चंगुल में एक बद्ध जीव का भौतिक शरीर जो है इनके चंगुल में है। इसका मतलब है जो आत्मा के ऊपर आवरण आ गया है, जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये तीन चीजों के प्रभाव में है। क्या है तीन चीज, काल के प्रभाव में, जिसका मतलब है बुढ़ापा और व्याधि और मृत्यु आएगा ही। और कर्म का मतलब है अच्छा कर्म बुरा कर्म के अनुसार हमें प्रारब्ध कर्म प्राप्त होता है। और गुण का मतलब है तीन गुण का प्रभाव, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसका प्रभाव, तीनों के प्रभाव में हमारा शरीर है। इस तरह है काल कर्म गुण आदिनो। तो ये काल क्या है हम सोचते थे, कुछ कुछ भागवत के श्लोक में बताया गया है कि सपालो यत वशे लोको वायोरिव घनावली, व्हाट इज दैट वर्स फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन टॉक्स अबाउट काल, एनीबडी नोस दिस वर्स, सपाले यद वशे लोको वायोरिव घनावली। जैसे कभी कभी आसमान में बड़ा बादल होता है उसको करके बड़ा हवा उसको धक्का मारकर उसको दूसरे कोने में लेके जाता है वो। इस तरह बड़े बड़े राजा लोग हो चुके हैं इस दुनिया में, कभी कभी सारे भारत को वो चलाते थे, नहीं तो सारे दुनिया को अलेक्जेंडर चलाते था इसे, वो बड़े बादल के बराबर है। लेकिन काल के प्रभाव से वो बड़े बड़े राजा अपने राज्य के साथ अब निकल गए इस धरती के ऊपर से, है कि नहीं। सर वायोरी व घनावली, जैसे वायु ये घना बादल को भी निकाल देता है आसमान से, ऐसे इस तरह काल के प्रभाव से सब चीज मिट ही जाते हैं इस दुनिया में, कुछ भी बचता नहीं है इस दुनिया में, इस तरह भागवत में बताया गया। तो ठीक है, हम समझते हैं कि काल का मतलब है समय है। और कुछ कुछ स्थान में भागवत में बताया कि काल क्या है, जो सही समय पर काल के समय एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है ऐसा बोला गया है, काल आ गया उसको लोग बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं लोग उसको। नहीं तो किसी को कुछ ऐसे हो जाता है, तकदीर में लिखा है ये काल के वश में है, कभी कभी एक बच्चा पिता के पहले मर जाता है, अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु बोलते हैं उसको। ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि बच्चा पिता के मरने के बाद वो मरना चाहिए उसको, लेकिन अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो काल की बात आता है इस तरह के विषयों में, लेकिन भागवत के तात्पर्य में बताया गया है कि ये काल क्या है। भगवान भी बताते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय में, कालोस्म्यहम् लोकचयकृत् प्रवृद्धो, ऐसे बताते हैं ना अर्जुन को, कालोस्मि अहम् बताते हैं, मैं ही काल हूं भगवान बताते हैं। अगर भगवान ही काल है, प्रभावम पौरुषम प्राहुः कालम एके यतो भयम्, क्या भगवान ही काल है या काल भगवान से भिन्न है, यह प्रश्न उठ सकता है। इसके बारे में बताया गया है कि यह काल कौन है, काल शिवजी है, और शिवजी का एक नाम है काल भैरव, ऐसा एक नाम है उनका काल भैरव नाम के। इसलिए प्रकृति से काल को मिलाना का मतलब क्या है, दुर्गा से शिवजी को मिलाना, वही मतलब है इसको। तो भगवान परम सत्य विष्णु नहीं तो कृष्ण, वो जो है वो जीवात्मा के भौतिक इच्छाओं इच्छाओं में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये कुब्जा नाम के एक स्त्री थी, बुढ़ी स्त्री थी वो मथुरा में, लेकिन भगवान ने उनके चंदन का लेप मिलने के बाद भगवान उनको एक तरुणी स्त्री का शरीर दे दिया उनको। लेकिन उसके बाद कुब्जा को इच्छा हुआ कि ये कृष्ण के साथ संभोग करे, उसका ऐसे इच्छा हुआ। लेकिन कृष्ण तो सच्चिदानंद है, दिव्य है, वो उसके हृदय में जो अशुद्ध इच्छा है उसका पूर्ति कैसे करेंगे वो, इसलिए बताया गया है भागवत में कुब्जा और गोपियों में बड़ा फर्क है। गोपियों के हृदय में सिर्फ शुद्ध प्रेम था, सेवा करने की भावना था, लेकिन कुब्जा के हृदय में एक शोषण करने की, कृष्ण को भोगने की भावना था वो। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि सेवा भाव जो है वो सेवा करना लेकिन कुछ अपेक्षा हेतु नहीं रखना ऐसे, लेकिन भोग का मतलब है मैं भोगना चाहता हूँ चाहती हूँ इस तरह का भावना। तो ये दोनों के बीच में फर्क कैसा है, एक सोना और लोहा के बीच में फर्क है उसके बराबर है ऐसे। तो इस तरह उसके अंदर भावना था। तो भगवान ने उद्धव जी को लेकर कुब्जा के घर में गए भगवान, तभी कुब्जा ने भगवान के दोनों पदकमलों को लेकर अपने छाती में जब रखी, तभी उनके उनके हृदय में जो भी की कलमश था, काम वासना था, वो सब मिट गया। जैसे जलकर राख बन जाता है लकड़ी, इस तरह उनके हृदय में जो भी वासनाएं थी सब मिटकर राख बन गई, वो शुद्ध हो गई वो। और उसने विनती की कृष्ण को कि हमारे साथ रहो और एक हफ्ता रहो, तो कृष्ण बोले नहीं करके वो चले गए। उद्धव जी और कृष्ण दोनों चले गए। लेकिन उधर प्रभुपाद जी एक सेंटेंस लिखते हैं कृष्णा बुक में, आप पढ़ेंगे कि भगवान कुब्जा के साथ रहने की इच्छा नहीं रखी। कारण क्या है? कुब्जा इज एक्सपेंशन ऑफ धरती, भूमि, जस्ट लाइक सत्यभामा एंड आल्सो द भूमि, भूमि आल्सो एंड कुब्जा आल्सो, दे आर ऑल सेम तत्व, वो सब एक ही तत्व है। तो भगवान उनके साथ क्यों रहे रहूंगा नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो इस भौतिक पदार्थों से वो संग नहीं करना चाहते हैं। भगवान असंगोहम ही पुरुष, भगवान संग नहीं करते हैं भौतिक पदार्थ से। लेकिन जीवात्मा भगवत धाम में भगवान जीव को बोलते हैं कि हे जीव, मैं हमेशा शुद्ध सत्व में रहता हूं, तुम भी शुद्ध सत्व में रहो, तुमको भी आनंद, मेरे लिए भी आनंद। हम नाचेंगे गाएंगे, हम आध्यात्मिक दुनिया में ही रहेंगे, लेकिन जीव उनको नीचे उतारना चाहता है भगवान को। बोलता कि नहीं, आ जाओ मेरे अंदर, तुमको शोषण करने की भावना है तो तुमको लेकर शोषण करना है। इस तरह भावना के साथ वो भगवान को भी नीचे खींचता है वो। तो कभी कभी जैसे हमारे मित्रों में हम देखते हैं, एक मित्र बोलता है कि आओ हम इस्कान में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, दूसरा बोलता है हम सिनेमा घर जाएंगे, उसको खींचता है। इस तरह जीवात्मा बोलता है भगवान को, नहीं नहीं हमको भौतिक दुनिया में जाना है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को प्रभावम पौरुषम प्राहु कालम, काल भैरव के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, शिवजी के रूप में। तो विष्णु कृष्ण वो भौतिक पदार्थ को छूते नहीं है, लेकिन जब भौतिक पदार्थ को छूना होता है तभी वो शिवजी बन जाते हैं, वो काल भैरव बनते हैं। इसलिए वो काल भैरव जब प्रकृति जो दुर्गा देवी है उनके साथ संग करते हैं, इसलिए विष्णु अपने आंखों के द्वारा सह ऐक्षतः सह असृजतः, ऐक्षता का मतलब अपने आंखों के द्वारा वो जीवात्माओं को भगवत धाम से निकाल कर वो भौतिक दुनिया में डालते हैं वो। इसलिए उनके आंखों को क्या बोला गया, शंभु बोला गया, काल भैरव, वही काल भैरव। तो उसके द्वारा वो प्रकृति दुर्गा देवी के योनि में डालते हैं सबको, जैसे हम लोग अभी दुर्गा के योनि में है, क्योंकि पदार्थ क्या है, ये भौतिक पदार्थ पंचमहाभूत। अभी अब जीवात्मा किधर बैठा है, पंच महाभूतों के अंदर बैठा है अभी वो, इसलिए हम दुर्गा के योनि में हैं हम लोग। तो हमें दुर्गा के योनि में किसने डाला, कृष्ण ने काल भैरव के द्वारा डाला हमको ऐसे। इसलिए प्रभा जी बताते हैं कि ये जब भी काल की बात आता है तभी वो शिव जी हैं। अभी भगवान बताते हैं अहम बीज प्रदह पिता, वो पिता कौन है, प्रभुज बने कृष्ण नहीं है, वो शिव जी है। क्यों? कृष्ण ही है लेकिन कृष्ण ने एक्सपैंड किया है शिव जी के रूप में। प्रभुज के लेक्चर सुनिए आप, पढ़ेंगे आप, सुनेंगे आप, प्रभुज लेक्चर में बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण जो है हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, भौतिक शरीर के पिता नहीं है कृष्ण। भौतिक शरीर के पिता कौन है, शिव जी। इसलिए शिवलिंग की पूजा जो होता है वो ये पुरुष की जो जननेन्द्रिय होता है वो शिवलिंग है वो, और शिवलिंग के नीचे जो है वो दुर्गा का योनि है वो। तो शिव पुरुष स्त्री का मिलन जो है उसको ही शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है ऐसे। वो एक बॉडी से इट्स अ सिंबल, इट्स अ सिंबल ऑफ मेल फीमेल यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती यूनियन, दैट्स व्हाट इज शिवलिंग एक्चुअली। क्योंकि वो ही आधार है भौतिक दुनिया का, नहीं तो भौतिक दुनिया में जीवों को शरीर कैसे मिलेगा सब जीवों को, है ना। लेकिन जब भगवान विष्णु ये जीवों को शरीर प्रदान करना चाहते हैं, उनको स्त्री पुरुष जैसे भोग संभोग करने की जरूरत नहीं है उनको। जैसे इस दुनिया में सबको मालूम है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सबको मालूम है, लेकिन विष्णु क्या करते हैं अपनी आंखों से सह ऐक्षतः, ऐक्षत मतलब अपनी आंखों से देखते हैं दुर्गा के योनि को, जिसके द्वारा वो शंभु के द्वारा वो जीवों को उनके योनि में डालते हैं। तो भगवान किसी भी अंगों से किसी भी कार्य करने के लिए उनके अंदर क्षमता है। जैसे नाभि से वो एक कमल को पैदा करके उसमें ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं ना भगवान। इधर कोई है जो नाभि से कुछ कमल पैदा करेगा इस दुनिया में, उतना ही नहीं, कमल पैसे पहले पैदा करो उसके बाद बच्चे पैदा करना चाहिए। किसी स्त्री की मदद के बिना कोई कर पाएगा कोई? क्योंकि इस दुनिया में किसने देखा ही नहीं कि पुरुष से एक स्त्री, पुरुष से ही एक बच्चा आता है। पुरुष से बच्चा आएगा नहीं, बच्चा तो आएगा स्त्री के गर्भ से, लेकिन सिर्फ पुरुष वीर्य दे सकता है, है कि नहीं? तो इस तरह ये भगवान की चमत्कार है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आंखों से शंभु के द्वारा वो दुर्गा के योनि में डालते हैं। तो प्रधान बनती है प्रकृति, प्रकृति बनती है महातत्व। तो अभी प्रधान और प्रकृति में क्या फर्क है? प्रधान का मतलब है जैसे छोटी स्त्री है, 6-7-8 उम्र की स्त्री है, लेकिन प्रकृति में क्या फर्क है? जब स्त्रियां बड़ी हो जाती हैं उनके अंदर जैसे बच्चे धारण करने की क्षमता आती है उनके शरीर में, ऐसे एक स्तर पर जैसे बच्चा पैदा होते ही उनके स्तन में दूध निकलती है कि नहीं? भगवान ने ऐसे आयोजन किया है क्योंकि बच्चे को भोजन माँ की दूध है, ऐसे भगवान ने बनाया है इसे। और सही वायस में उनको शादी हो जाना चाहिए, अभी 18 उम्र 20 उम्र 21-22 उम्र ऐसे उसमें हो जाता है, तभी जब उनको वीर्य प्राप्त होता है। वही भगवान विष्णु जो है दुर्गा के योनि में शिव जी के द्वारा जीवों को डालना, वो उसके बराबर है, पुरुष स्त्री का यूनियन के बराबर है वो। उसके बाद जब एक स्त्री गर्भ होती है उसका पेट बड़ा हो जाता है, जितना महीना बढ़ता जाता है उतना बड़ा होता जाता है कि नहीं? तो वो महातत्व है के बराबर है। महातत्व में क्या क्या है? 24 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 तन्मात्र है। उसके बाद अभी शब्द स्पर्श रस रूप गंध वो तन्मात्र है। अभी कितने हो गए? 15 हो गए। पंचमहाभूत भूमि राप अनल वायु काम वो है, और 3 सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? 23 हो गए। और आत्मा है, क्योंकि सब आत्माओं को डाल दिया ना अंदर, उनका भी मिलाकर 24 हो गया। ये 24 तत्वों को संख्या में बहुत विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। तो अभी जब भौतिक दुनिया सृष्टि होता है, ये 24 पदार्थ कैसे आते हैं प्रकृति से, प्रधान से प्रकृति, प्रकृति से महातत्व कैसे आता है वो भी वर्णन किया गया है। अभी प्रकृति होने के बाद क्या होता है, ये जीवात्मा हैज अ ग्लो अराउंड हिम, लाइक आरा अराउंड हिम, विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्शियसनेस ऑफ द जीवा। जीव के ऊपर एक तरह का तेज है, प्रभा है, आभा है, जो उसकी चेतना है, जो आध्यात्म दुनिया में हमेशा वो शुद्ध होता है, वो उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं है उसमें। लेकिन जीव जब उसके अंदर इच्छा आता है कि मैं भगवान से विमुख होकर, भयम द्वितीयात अभिनिवेश तस्यात ऐसे बोला गया है ना, तो भगवान से ईशात अपेतस्य, ईशात का मतलब कृष्ण है, ईश, ईशाद अपेतस्य, भगवान से बहिर्मुख हो जाना, भगवान से मुड़ लेना अपने आप को। तो 2 तरह के जीवात्माएं हैं, प्रत्येक जीव प्रत्येक आत्मा पराग आत्मा, ऐसे 2 तरह की आत्माएं हैं। तो एक तरह की आत्माएं हैं जो कभी भी भगवान से अपने पीछे नहीं मुड़ लेंगे, हमेशा भगवान को अपनी आंखों से देखते रहेंगे, भगवान की दाह में रहेंगे, उनको नित्य सिद्ध बोलते हैं उनको। लेकिन दूसरे जीव हैं जो भगवान से कभी कभी मुड़ लेते हैं अपने आप को, तो भगवान को पीछे दिखाते हैं और पूछ रहे हैं भगवान किधर, भगवान किधर, भगवान तो पीछे हैं। अगर मैं इधर सामने आकर मैं आपको देखते हुए पूछूंगा भगवान किधर, आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे मुड़ो, तो भगवान दिखा देंगे आपको, है कि नहीं? तब वो भगवान से मुड़ लेता है अपने पीछे और भगवान को समझ नहीं पाता है, तो तभी वो भौतिक दुनिया में आता है वो जीव। तो उसके जो कांति है उसमें विकार आ जाता है। वो विकार क्या है? मुझे खुद भोक्ता बनना है, मुझे भगवान के नकलीपन करना है, इस तरह का इच्छा उसकी चेतना में है, उसको चित्त बोलते हैं। इसलिए चित्त को प्रभुपाद जी बताते हैं कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। आप देखेंगे भागवत में, देखिए कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, यू टाइप इट यू विल गेट चित्त। चित्त मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, चित्त मीन्स कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। वो चित्त हो जाता है, वो चित्त आत्मा के ऊपर आवरण है। वो चित्त से निकलता है अहंकार पहले, तो वो अहंकार, जब वो अहंकार मिलता है, ये दुर्गा देवी के पास 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। वो अहंकार मिलता है सत्वगुण से, उससे मन निकलता है। वो अहंकार मिलता है रजोगुण से, उससे निकलता है बुद्धि। और अहंकार मिलता है तमोगुण से, उससे निकलते हैं इंद्रिया। तो इस तरह मन बुद्धि इंद्रिया सब निकलते हैं उससे. सो देयर इज अ ग्लोबल मन, ग्लोबल इंटेलिजेंस, ग्लोबल इंद्रिया इज ऑल्सो देयर. उसके बाद जैसे हमारे छोटे छोटे शरीर है, इस तरह यूनिवर्स भी एक शरीर जैसा है जो भगवान का शरीर है. लेकिन ये यूनिवर्सल शरीर में आत्मा कौन है? विष्णु है, परमात्मा है. इस तरह हमारे शरीर में आत्मा कौन है? हम है. इस तरह ग्लोबल यूनिवर्सल शरीर में भी ऐसा अहंकार है, बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है. लेकिन हर एक छोटे छोटे जीव को भी दे दिया जाता है. जैसे चपाती का आटा बनाते हैं बहुत, उसे एक एक गोला निकालते हैं ना, वो गोले के प्रपोर्शन भी उतना ही होगा जितना बड़ा का प्रपोर्शन है ना. ऐसे तो हम सब एक एक चपाती गोले की बराबर है. एक एक शरीर को उसमें आत्मा के ऊपर आवरण दिया गया है, मन बुद्धि अहंकार का, उसके ऊपर पंचमहाभूत का, और ये सब इंद्रिय वगैरह दिए गए हैं सब. लेकिन इसमें आश्चर्य की बात क्या है, ये 24 तत्व जो हमारे शरीर में है, इसका पूरा कंट्रोल है किसके पास? दुर्गा देवी के पास. हमारे पास कंट्रोल नहीं है. है शरीर हमारे पास, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? दुर्गा देवी, दुर्गा के पास है. और अनेक देवता भी हैं जो इंद्रियों को, अलग अलग हमारे इंद्रियों को संभालने वाले. जैसे हमारे आंख है, सिर्फ सूर्य के उपस्थिति में ही वो देख पाएगा. वो सूर्य के बिना वो देख, क्योंकि आंखों के अधिष्ठाता देवता है सूर्य देव. ऐसे है. इस तरह हमारे पेट में भोजन डालना आसान है, लेकिन पचन करना हमारे हाथ में नहीं है. पचन कार्य किया जा रहा है. आप देखेंगे इस तरह हर एक के लिए देवता है, हर एक हमारे शरीर के अंग के लिए वो कंट्रोल करते हैं. इसलिए बताते हैं अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृति मीयूषः. कभी कभी जीव अपने अहंकार के वश में आकर सोचता है कि ये शरीर मेरा है और मैं मेरा मेरा कंट्रोल में है. हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे किसी के पास मर्सिडीज बेंज कार है, वो अपने चाबी को घुमा रहा है अपने हाथ में, तो उसके मित्र आया, बोला कि अरे हमको लेके जाओ वो घुमाने के लिए. वो बोला कि मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन हमारे मालिक जब बुलाएगा तभी हम कार चला पाएंगे. तब तक हम चला नहीं पाएंगे कार, क्योंकि कार का कंट्रोल किसके पास है? मालिक के पास है. अब मालिक बोलेगा ये कार को किधर लेके जाना है, वो ड्राइवर डिसाइड नहीं कर सकता. ड्राइवर क्या बोल सकता है अपने मालिक को? मालिक जी आज थोड़ा बीच जाने की मन लग रहा है, बोल सकता है वो? जो मास्टर बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा उसको. इस तरह हमारे शरीर भी, ये भौतिक शरीर दिया गया है, लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं है. कंट्रोल है दुर्गा के पास, और अनेक 33 कोटि देवता भी हैं. अलग अलग काम दिया है भगवान ने उनको, सब जीव राशियों के इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए. तो आप बोलेंगे कि अगर हमारे इंद्रियों का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो हम जब आंख खोलना है बंद करना हम कर रहे हैं, हाथ ऊपर करना नीचे करना हम कर रहे हैं, क्या हम इंद्रियों का कंट्रोल हमारे पास नहीं है? ये लग रहा है कि कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन कंट्रोल नहीं है. जैसे एक व्यक्ति एक लारी के पीछे एक रस्सी लेकर बांधा, और रस्सी को लेकर बोला लोगों को, सब लोग आकर देखो मैं भी लारी को खींचने वाला हूं मेरे शक्ति से. तो करके वो खींचा तो लारी पीछे पीछे आने लगा, तो सब लोग आश्चर्य हुआ, सब लोग ताली बजाने लगे. अरे कितना शक्ति है इसमें, ये खींच रहा है लारी को, इतना बड़ा लारी को इतना बोझ के साथ. लेकिन वो लारी कैसे पीछे आ रहा था? क्योंकि ड्राइवर बैठ गया और थोड़ा पीछे ले रहता है जाने के पहले, तो थोड़ा पीछे पीछे आया. उसके बाद ये व्यक्ति बोल रहा था और लारी ड्राइवर तेज से वो आगे निकल गया, तभी इसका हाल बुरा हाल हो गया है. आपको पता चलेगा क्या हुआ होगा इसको. इस तरह इस दुनिया में हम लोग भी कभी कभी कुछ इच्छा करते हैं करने के लिए, और हो ही जाता है. हम सोचते हैं कि मैंने किया है, लेकिन बाद में पता चलेगा हमने क्या, किसी और ने किया. क्योंकि हम इच्छा करने के बावजूद भी अनेक चीज होते नहीं इस दुनिया में. कितने लोगों का अनुभव है कि नहीं? और कभी कभी हम इच्छा ना करने के बावजूद भी कुछ कुछ अपने आप हो जाते हैं अपने जीवन में. एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोला कि प्रभु जी मुझे 93 मार्क मिल गया. बोला उसको, अच्छा बड़ी बात है, तुम बुद्धिमान हो. वो बोला कि मैं तो 40 मार्क के लिए लिखा था, लेकिन मुझे 93 मिल गया. तो वो बोला कंप्यूटर मिस्टेक हो गया, 39 मुझे मिल रहा था, मुझे 93 मिल गया. ऐसे वो क्लास में, उसी क्लास में एक टॉपर था, वो फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसको 39 मिल गया उसको. कभी होता है ना ऐसे, कंप्यूटर मिस्टेक होता है, लेकिन भगवान के इसमें कंप्यूटर मिस्टेक होता नहीं है. तो कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ हो ही जाता है. कभी कभी चाहने पर भी कुछ होता नहीं है। इससे हम हमें पता चल सकता है कि कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जैसे अभी लाइट है, स्विच ऑन करो ऑन हो जाता है, ऑफ करो ऑफ हो जाता है, लगता है कि कंट्रोल हमारे पास है। जब MSEB के लोग काट दिया इलेक्ट्रिसिटी, जब ऑन करो ऑन होता नहीं है ना। इस तरह ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे भौतिक शरीर है हमारे पास, लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं है। चाबी का कुछ हमारे पास नहीं है, लॉकर है हमारे पास, लेकिन जब जब हमें खोलने की इच्छा है, हम उनको जाकर बोलना पड़ेगा कृपया खोल दीजिए, थोड़ा लेना है कुछ सामान है, तभी वो खोल कर छोड़ेंगे आपको। जैसे हमारे इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, माइक सिस्टम है, उधर स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है, लेकिन चाबी का गुच्छा किसके पास है? जब मतलब के पास है। अगर आपको प्रोजेक्टर चाहिए तो आप, हाँ हमारे पास मंदिर में 12 प्रोजेक्टर हैं, लेकिन है, लेकिन चाबी का कुछ हमारे पास नहीं है, है कि नहीं? समझे ना आपने? तो इस तरह ये भौतिक पदार्थों को भगवान ने सृष्टि की है शिव जी के द्वारा, काल भैरव के द्वारा, प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालकर उन्होंने सृष्टि किया है। और इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। उसके आगे के श्लोक में बताते हैं, उसके पहले के ददाम गर्भम ददाम्यहम् ऐसे बताते हैं, गर्भम ददाम्यहम्। ये प्रकृति और महातत्व इत्यादि को सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ, और काल के प्रभाव के द्वारा जीवों को डालने वाला भी मैं ही हूँ। उसके बाद 84 लाख योनियां जो पैदा होते हैं वो शिव जी के प्रकृति के ऊपर प्रभाव के कारण हर एक जीव को अलग अलग 84 लाख योनियों में किसी एक योनि उनको दिया जाता है। और ये योनियां जो होते हैं 84 लाख योनियां, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट मालूम है ना आपको? अभी कंपनियों में टेम्पलेट बनाते हैं, स्टेंसिल यूज किया आपने, स्टेंसिल मालूम है? अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग प्रिंटिंग करते थे, कुछ लोगों को प्रिंटिंग मालूम है, प्रिंटिंग का मतलब ऐसे ये लिखना बी लिखना एकदम प्रिंट जैसा लिखना है ऐसे। कुछ लोगों को जिनको लिखना नहीं आता वो स्टेंसिल यूज करते हैं, वो क्योंकि स्टेंसिल में टेम्पलेट जैसे होता है उसको लिखते हैं। इस तरह 84 लाख टेम्पलेट हैं जिससे अनेक मल्टीपल कॉपीज निकलते हैं, ऐसे उससे ही निकलते हैं ये, इनसे ही। लेकिन ये जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि कुछ कुछ जीवराशियां एक्सटिंक्ट हो गए, व्हाट इज एक्सटिंक्ट, लुप्त हो गए। तो जरा सोचिए, अगर आम का पेड़ लुप्त हो गया है, किसी के पास भी आम का कुटली भी नहीं है सारे दुनिया में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, हे कृष्ण दान दीजिए एक आम का कुटली, क्योंकि खत्म हो गया, हमने खत्म कर दिया उसको। क्योंकि ये वैज्ञानिकों के पास शक्ति नहीं है आम का कुटली तैयार करने के लिए, लेकिन पहला कुटली किसने तैयार किया? आम का भगवान ने तैयार की, उससे शुरू हुआ, हजारों लाखों करोड़ों आम पैदा हो गए। ये समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे भगवान बताते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम येषवोस्तिष्ठ काम दुख। इस तरह तीसरे अध्याय में 9, 10, 11 श्लोकों में बताते हैं भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कि सहयज्ञा प्रजा आदि काल में, शुरुआत के काल में मैंने 84 लाख योनियों को सृष्टि की मैंने, और सब जीवराशियों को भेजा मैंने इस दुनिया में, क्योंकि उनको इच्छा थी कि अलग भोग करने के लिए, मैं उनके लिए भोगने के लिए उनको व्यवस्था भी की है। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, कितना दयालु हैं कि जीव जब इच्छा करता है मैं भगवान से विमुख होकर भोग करूँ, उसके लिए सुविधा भी प्रदान करते हैं भगवान। ठीक है, तुमको अलग रहना है, पीने के लिए बारिश रखा है, बारिश का पानी है? और रोशनी भी रखा है सूरज के द्वारा, गर्मी भी रखा है सूरज के द्वारा तुम्हारी भलाई के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था की है, तो चंद्र सूर्य के द्वारा भगवान सब व्यवस्था करते हैं इस तरह है। और जीव भटकता है, इधर उधर भागता है, उसकी सब व्यवस्था करते हैं भगवान। और भगवान ये भी इच्छा नहीं करते हैं कि जीवात्मा को फोर्स करके अपने पास लाए, उसके ऊपर वो बड़ी से फोर्स बलात्कार नहीं करते हैं जीवात्मा को, ऐ शरण हो जाओ ऐसे कहते हैं, ऐसे तथा करो शरण आना तो हो जाओ, नहीं तो जितना भटकना भटको तुम। भगवान उनके लिए समय भी देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जीव को भगवान बोलते हैं कि तुम हमेशा के लिए भौतिक दुनिया में रह जाओ, क्योंकि तुम मेरे से बहिर्मुख हो गए ना, तो मेरे पास कभी मत आओ, अभी इधर ही रह जाओ। वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये काल को रखा है, जिसके कारण जीव को थोड़ा डर को भी पैदा करते हैं भगवान की। तो उसको कभी कभी माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चे को, ये बच्चा दिन भर खेलना नहीं, पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तुमको लाठी मिलेगा। लाठी बोलते हैं, तुमको लाठी दिखाते हैं, मारती नहीं है लेकिन दिखाती है वो माता, है ना, क्योंकि तभी तो पढ़ाई करेगा बच्चा, है कि नहीं। इस तरह भगवान ने भी एक लाठी लगा है काल के द्वारा, इसके द्वारा सब जीवों को सही मार्ग में लाने के लिए भगवान ने रखा है वो भी है? तो इस तरह जीवों को भगवान धीरे धीरे उनके आश्रम में लेके आ रहे हैं, जिनके आश्रय से ही जीवात्मा को कल्याण प्राप्त हो सकता है, इस तरह है। तो इस तरह ये भगवान की बहुत अद्भुत लीला है कि अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तरित करके योग निद्रा में लेटते हुए सब ब्रह्मांडों को सृष्टि करके, और हर ब्रह्मांड में इस तरह जीवराशियों को डालकर उनको तीन गुणों के द्वारा और 33 कोटि देवताओं के द्वारा उनके इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को संभाल कर, और इतना ही नहीं खुद ही एक अवतार बनकर, एक ही नहीं, ये नावतारेण भगवान हरिश्वर है, इसे बताते हैं कि अनगिनत अवतारों के रूप में भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं, कृष्ण हो, राम हो, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि। और इन अवतारों में भगवान के अनगिनत नाम होते हैं, अनगिनत लीला चेष्टाएं होते हैं, और इन अद्भुत क्रियाओं को शास्त्रों में, ग्रंथों में वेद व्यास जी ने लिखा है। इनको पढ़कर, सुनकर, इनको रम कर जीव अपने हृदय में भगवान की प्रेम भक्ति को जागृत करके पुनः भगवान की पदकमलों के आश्रय प्राप्त कर सकता है, इसका भी व्यवस्था की है भगवान ने। ऐसे इतने दिव्य नदियां जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, इतने दिव्य चार धाम यात्रा लोग जाते हैं भारत में, इस तरह साधु महात्माओं को भगवान ने भेजा है, दिव्य ग्रंथों को दिया है, हरिनाम को दिया है, कृष्ण प्रसाद को दिया है, खुद ही एक अर्चा विग्रह के रूप में आकर दर्शन देते हैं, कृपा कटाक्ष प्रदान करते हैं। इस तरह भगवान जीव को कैसे वो आलिंगन देते हैं, कैसे अपनी ओर लेके जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको समझकर जीव के हृदय में थोड़ा बहुत उसके हृदय पिघल सकता है। तो प्रभुपाद जैसे महात्माओं ने जीवों को भगवान के साथ संबंध जुड़ाने के लिए इस तरह के बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, प्रवचन दिए हैं, ताकि हम लोग इसको समझकर वापस हमारे दिव्य संबंध को पुनर्जागृत करें। लेकिन साथ साथ इस तरह के सांख्य सिद्धांत को, फिलॉसफी को समझने से हमें पूरा एक आइडिया मिलता है कि भगवान, यह भगवान का एक तरह का लीला बताया गया है, यह भी भगवान का लीला है। एक तो लीला है भगवान की शुद्ध लीलाएं जो होते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में आकर अपने भक्तों के साथ करते हैं लीला भगवान, और ये दूसरा तरह का लीला है भौतिक दुनिया का लीला भगवान के, जो प्रकृति के साथ भगवान लीला करते हैं इसे, जिसमें जीवराशियों को डालकर जब प्रलय आ जाता है, सब जीव चिल्लाते हैं, छींकते हैं, पूरा पानी भर जाता है नीचे से ऊपर तक, तो उस समय सब जीव गर्भदक्ष विष्णु के नाभि में रहते हैं, सो जाते हैं सब, क्योंकि कुछ क्रिया नहीं है। ब्रह्मा जब सो जाते हैं वो भी सो जाते हैं सब जी, जब ब्रह्मा जाग जाते हैं, दिन ब्रह्मा का दिन आ जाता है, हमारे गर्भदक्ष विष्णु वो उठा देते हैं सब जीवों को, उठो भी, सब अपने अपने कर्म के बोझ पीछे लेकर भागते हैं, अलग अलग योनि को प्राप्त करते हैं उस समय। इस तरह भटक भटक कर बहुत जन्मों को काटने के बाद वो भगवान के शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त होता है, बहुत बहुत करोड़ों जन्मों के बाद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा हमारे इस जन्म में हमें भगवान के भक्तों की संग और शुद्ध भक्ति की ज्ञान और हरिनाम की महत्वता समझना, और खास करके कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधार ऐसा बोला गया है, कलयुग में नाम ही एक आधार है, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, और इसी जन्म में हम भगवान के पदकमलों को प्राप्त कर सकते हैं, जब हम इस दिव्य ज्ञान को हम गंभीरता से लेते हैं अपने जीवन में और उतारते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, और भक्तवृंदा की।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक धन्यवाद प्रभु जी, अभी एक दो दिन में शिवरात्रि आ रही है।
अच्छा,
आपने भगवान शिव के बारे में अच्छा उनका पोजीशन क्या है बता दिए।
प्रभु जी बोलते हैं शिव जी भगवान भी है भगवान भी नहीं है, दोनों है। बोलते हैं कैसे, जैसे दूध और दही, अब दूध और दही दोनों एक है अलग है, अनेक लोग बोलेंगे एक ही है, एक भी नहीं अलग भी है। तो यह उदाहरण दिया है हमारे शास्त्र में, भगवान विष्णु से ही शिव जी आते हैं, उनका विस्तृत रूप है। लेकिन भगवान विष्णु और शिव जी में क्या फर्क है, जैसे हम लोग अभी पेंटिंग करना होता है हम ये गे पहन लेते हैं, ये ग्लव्स पहन लेते हैं, और पूरा पेंटिंग होने के बाद वो ग्लव्स को निकाल देते हैं, हाथ साफ ही रहता है। तो हाथ विष्णु जैसा है और ग्लव्स शिव जी हैं, ऐसा है। तो जब भौतिक दुनिया के साथ ये करना होता है, संपर्क इंटरेक्शन करना होता है, तभी भगवान विष्णु ही शिव जी के रूप में विस्तारित होते हैं ऐसे।
जब भी हम प्रचार में जाते हैं तो कोई विद्यार्थी हो चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, मुख्यतः इस प्रकार से दो प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपने बताया कि ये जो प्रत्यक आत्मा और पराक आत्मा है, तो वो एक तो ये पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो सभी जीवात्माओं को प्रत्यक आत्मा क्यों नहीं बनाते हैं? अगर वो तो आत्मा उनके अंश हैं और वो सर्वशक्तिमान है तो सबको एक जैसा प्रत्यक आत्मा,
ठीक है। उसका कारण है, प्रभु बताते हैं कि 10,000 वाट बल्ब है कृष्ण, 10,000 वाट बल्ब जैसे हैं। अब शिव जी हैं 9,000 वाट बल्ब है, ब्रह्मा जी 6,000 वाट बल्ब, इंद्र जी 3,000 वाट बल्ब, उसके बाद जो इंद्र वरुण चंद्र वायु वो सब 1,000 वाट बल्ब, और उनके अनेक अनुयायी होते हैं वो 500 वाट बल्ब होते हैं, और उनके भी असिस्टेंट्स होते हैं। हर एक आदमी के लिए थोड़ा सर्कल होता है उनका। आप देखेंगे जैसे कोई जीवी से होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल प्रीचर्स होते हैं, हर एक का थोड़ा थोड़ा ग्रुप्स होता है ना, उनके लोग होते हैं, उनके कोई असिस्टेंट्स देते हैं उनको, ऐसे देवताओं के पास भी है ऐसे। तो उसके बाद और छोटे उपदेवता वगैरह होते हैं वो 100 वाट बल्ब। जीवात्मा कैसा है, साधारण हम जैसे लोग 50 वाट बल्ब है ऐसे। तो जितना हम छोटे छोटे होते जाते हैं, हम ये जैसे प्रभुज बोलते हैं बिकॉज वी आर इन्फिनिटेसिमल वी कैन बिकम ओवर पावर्ड बाई माया। अभी शिव जी को माया ओवर पावर नहीं कर सकती है, हालांकि शिव जी ने मोहिनी मूर्ति का लीला की, वो इट कम्स ऑन अ प्योर प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ इम्प्योर प्लेटफॉर्म। लेकिन इंद्र को कभी इंद्र मोहित हो जाते हैं उनके स्तर पर, तो इंद्र से नीचे जो भी जीव हैं वो मोहित होने की संभावना है कि नहीं? इस तरह भगवान कभी मोहित नहीं होंगे, भगवान खुद ही, वो तो माया के अधिपति हैं, वो मायाधीश हैं, और बाकी जो छिद्र जीव हैं हम जैसे, हम मायावश होने की संभावना है। सो देर आर टू एक्सपेंशंस, वन इज कॉल्ड स्व अंश एंड वन इज विभिन्न अंश। सो स्वांश विल नॉट गेट बेवल्डेड, बट विभिन्न अंश कैन गेट बेवल्डेड, करेक्ट ना? सो वी आर कमिंग इन विच वन, विभिन्न अंश, या। लेकिन भगवान ने ऐसे हमें स्वतंत्रता प्रदान की है जिसको हम अगर कभी भी दुष्प्रयोग नहीं करेंगे तो भगवान के साथ ही रहेंगे हम, लेकिन उसका दुष्प्रयोग करते हैं तो हम अलग होते हैं इसे। एक्चुअली ये कैसा है, देखिए हम भगवान के धाम में जीव के चेतना जो उनके चित्त जो है उसमें जब थोड़ा दूषण आता है, दूषण मतलब क्या है, उसको कुछ कर्म करने की इच्छा है, कुछ अलग होकर करने की इच्छा होता है, वो जब आता है ना तभी भगवान विष्णु के महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं अपने आप को। लेकिन विष्णु के नाभि में ही वो जीव हैं, तो आध्यात्म दुनिया के जो भी जीव हैं वो विष्णु के नाभि में रहते हैं जब, तो भगवान का एक व्हाट अमेजिंग क्रिएशन, क्या भगवान करते हैं भौतिक दुनिया सृष्टि करते समय, जो जीवों को भौतिक दुनिया लेना है उनको विष्णु के नाभि में डालकर भेज देते हैं, और महाविष्णु जब विस्तारित होते हैं गर्भदाक्षय विष्णु, वो क्षीरदाक्षय विष्णु के साथ भेज देते हैं सब अवतारों को। द होल टूल बॉक्स ऑफ ऑल द अवतारस आर सेंट विद क्षीरदाक्षय विष्णु राइट फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्काई। सो कृष्णा एक्सपैंड टू महाविष्णु, महाविष्णु एक्सपैंड टू गर्भदाक्ष क्षीरदाक्षय। सो दैट मीन्स क्षीरदाक्ष विष्णु इज रिलीजिंग वन बाय वन, ही कीप्स इट विद हिम। सो दीज थिंग्स हैपन राइट एट द बिगिनिंग ओनली, दैट इज मेंशनड इन द भागवतम। सो देर आर टू वर्ड्स यूज्ड, निदानम एंड बीजम, द डिफरेंशिएशन इज मेड। Source and source of source, like that. So Krishna is the source of source, it is said. So these things are explained in the scriptures, how this kind of, that is why some people say the soul didn't come from spiritual world, they say. Why? Because the soul came from Nabhi of Mahavishnu. But if you read very carefully, it says that when Krishna expands as Mahavishnu, the jivas also go with Vishnu. You understand, huh? That's it, they go. Book like okay, one last
पूछते भी है कि जैसे जीवात्मा अगर भौतिक जगत में आती है तो फिर आपने जैसे बताया दुर्गा और उसके जो प्रतिनिधि है जैसे तीन गुण है ये सब कराती है लेकिन कभी कभी ऐसा सोचते कि मैं करता हूँ तो ऐसे लोग पूछते हैं जब प्रकृति के गुण कराती है और उसके दुर्गा देवी के एजेंट सब ये सब कराती है तो दंड हमको क्यों मिलता है.
अच्छा प्रश्न है. देखिए अगर कोई सिगरेट फूंक रहा है आप पूछो उसको हे सिगरेट क्यों फूंक रहे हो, वो बोलेगा सब भगवान ही करवाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में क्या है. ऐसे कुछ लोग बोलते हैं. लेकिन भगवत गीता के पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जीवात्मा पहले इच्छा करता है, उसके बाद भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसकी इच्छा को तुम पूर्ति करो तीन गुणों के द्वारा, तो पूर्ति किया जाता है. समझे ना आपने. जैसे अगर आप एक होटल में जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमें अनियन बज्जी दो, तो अनियन बज्जी वो देते हैं, है कि नहीं. अगर वो अनियन बज्जी कहते हैं अनियन बज्जी क्यों खाते हो, वो दे दिया क्या करूँ मैं, ऐसा आप बोलेंगे. आपने मांगा और पैसा भी भराया आपने, इसलिए वो अनियन बज्जी देते हैं. समझे ना आपने. तो हम क्या पैसा भरते हैं, अपने कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म वो पैसा है. वो जब हम भरते हैं उसको, उसके बाद भगवान आदेश देते हैं प्रकृति को, अभी इसने पैसा भरा है, जो भी ऑर्डर किया इसने रिक्वेस्ट किया उसको दे दो, ऑर्डर सप्लाई करते हैं भगवान. वो तीन गुणों के द्वारा वो गति करवाती है वो. समझे ना आपने. सो द जीवात्मा इज द इनिशिएटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज बाय हिज डिजायर्स. जीवात्मा सब कार्यकलापों को अपने जीवन में वो करता है किसके द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा. हम इच्छा करते हैं, प्रकृति सप्लाई करती है. देखिए भगवान भी इच्छा करते हैं भगवत धाम में, और उनकी इच्छाओं को पूर्ति कौन करती है, लीला शक्तियां हैं भगवान के पास, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, वो ऐसे बोलते हैं ना, ये सब शक्तियां हैं भगवान के, शक्ति के द्वारा भगवान करवाते हैं सब कुछ. समझ रहे आपने. इस तरह जिस तरह भगवान को शक्ति क्या करती है, सलाम मारकर सेवा करती है भगवान की, लेकिन हमको लात मारकर सेवा करती है हमारी, वही शक्ति, क्योंकि हम भगवान से बिछड़ गए हैं. ऐसा नहीं कि हम शक्ति को बोल सकते हैं कि, जैसे एक लड़का अपने घर में बैठा था तो देखा एक दिन अचानक एक नौकरानी आ गई, सोचा कि नहीं 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 नौकरानी आई हमारे घर में, उसको बुलाया आओ इधर 10 रुपया लेके जाओ, ये कॉमिक्स लेके आओ बोला. तो उसने ऐसे एक लाफा दिया उसको, तो बोला ही तुम लाफा दे रही हो, मैं पिताजी को कंप्लेंट करूंगा. वो नौकरानी बोली तुम्हारे पिताजी ने मुझे रखा है तुम्हारे टीचर के रूप में, क्योंकि अभी कल परीक्षा आ रहा है, तुमको कॉमिक्स पढ़ना है, बैठ कर पढ़ो अभी, ऐसे बोला उसने. इस तरह माया देवी के टीचर को किसने रखा है, कृष्ण से, कृष्ण ने ही रखा है. अगर हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो माया देवी सब सुविधा देगी वो, अगर हमको कृष्ण के विरुद्ध काम करना तो लाफा देगी वो. समझे ना आपने. सो कृष्ण हैज केप्ट अपॉइंटेड अ टीचर, क्योंकि पिताजी लाफा देना चाहते नहीं है बच्चे को, वो इतना प्रेम करते हैं कि लाफा देना नहीं चाहते हैं, वो एक टीचर के द्वारा देते हैं लाफा. वो टीचर कौन है, माया देवी. इसलिए हम अगर मायादास सदा उदास, कृष्णदास दास बोलते हैं ना, तो माया अगर माया देवी का दास बनते तो उदास बनते, क्योंकि वो लाफा देती है, लात खाना पड़ता है हमें, है कि नहीं. इसलिए हम सही मार्ग पर आ जाते हैं तो हम कृष्ण की दास बनेंगे हम, करेक्ट ना. श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की.